ओम शांति। हम ये सेशन शुरू करेंगे। हमारे बीच में आज का सेशन लेने के लिए भ्राता नेमीचंद पारिख जी मौजूद हैं और उनके साथ ही भारत भाई भी हमारे साथ हैं। उनसे निवेदन करूंगा कि वे मंच पे आके अपना स्थान ग्रहण करें। सभी हम करतल ध्वनि से उनका स्वागत करते हैं। भ्राता नेमीचंद जी रोड सेफ्टी के क्षेत्र में कार्य करते रहते हैं एवं जन जागृति फैलाने में उनकी विशेष रुचि है। ब्रदर नेमीचंद जी, आज जो विषय लेंगे उसका टाइटल है सेफ्टी ऑफ यू मी एंड फैमिली। तो अभी मैं उनसे निवेदन करता हूं कि आज के इस विषय पर हम सभी को इस बारे में बताएं।
ओम शांति। मेरी आवाज पीछे तक आ रही है? आप सभी पधारे सज्जनों का मैं इस स्पेशल सेशन में स्वागत करता हूं। स्वामीनाथन जी साहब के आने का विशेष आभार प्रकट करता हूं। और अगले इस सेशन में जैसा कि विषय दिया गया है सेफ्टी ऑफ यू मी एंड फैमिली, इस पे परिचर्चा करेंगे और स्पेशल रेफरेंस होगा रोड सेफ्टी। अब देखिए, सेफ्टी ऑफ यू मी एंड फैमिली, यू कौन? जो ड्राइव करता है, वन हु इज ए ड्राइवर। आप में से कितने लोग ड्राइवर हैं? हाथ खड़ा करें। कुछ हाथ खड़े हुए, कुछ नहीं हुए। जहां तक मेरी मालूमात है हम सभी ड्राइवर हैं, क्योंकि कभी न कभी हम वाहन चलाते हैं, चाहे हमारी पर्सनल कार हो चाहे मोटरसाइकिल हो, वही नहीं जो कॉमर्शियल वाहन चलाते हैं, हम भी ड्राइवर हैं। तो बींग ए ड्राइवर हमारी अपनी सेफ्टी, दैट इज यू। मी, वन हु इज ए रोड यूजर, जो हमारे अलावा रोड यूजर है वो हमसे बात कह रहा है। इस सब्जेक्ट को यूज समझें, क्योंकि हमारी सेफ्टी हम रखते हैं तब हम उसकी भी सेफ्टी रखते हैं जो अन्य रोड यूजर है, वेदर ही इज ऑन इन ए व्हीकल और ही इज ए पेडेस्ट्रियन। और तीसरा हुआ फैमिली। फैमिली से मैं समझता हूं कि दोनों की फैमिली, तब भी जब वो हमारे साथ वाहन में है और तब भी जब वो वाहन में साथ नहीं है, घर पे है। क्योंकि हम वाहन में फैमिली लेकर चलते हैं, अगर उनको कुछ हो जाता है तब भी वो सेफ नहीं है, और अगर हम उनको लेकर नहीं चलते, वो घर पे हैं और हमें कुछ हो जाता है, तब भी फैमिली सेफ नहीं है। इसलिए ये बहुत बड़ा ब्रॉडर कंसेप्ट है कि सेफ्टी ऑफ यू मी एंड फैमिली। अब मसला ये है कि ये सवाल क्यों उठा, रोड सेफ्टी के मामले में ये सवाल क्यों उठा, हम कहां असुरक्षित हैं या कौन सी सेफ्टी हमें चाहिए। तो इस पर विचार करने के लिए हमें थोड़ा सा विश्व परिदृश्य पे, फिर हमारे हिंदुस्तान पे और राजस्थान पे थोड़ी नजर डालनी पड़ेगी। मैं आपको बीच में बता दूं कि मेरे साथ जो साथी हैं मिस्टर भारत जांगीर हैं और ये मोटर व्हीकल इंस्पेक्टर हैं, और इन्हीं का ये प्रेजेंटेशन तैयार किया हुआ है, इनके लिए जोरदार तालियां। ये हमारा ग्लोबल सिनेरियो है। 1.3 मिलियन फेटलिटीज, आप कल्पना कर सकते हैं, 1.3 मिलियन लोग हर साल रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं, और ये जो फिगर है वो ऑथेंटिक फिगर्स हैं। 1.3 मिलियन फेटलिटीज, और नाइन्थ मेजर कंट्रीब्यूटर है अभी दुनिया में होने वाली मौतों में। और अगर इसी तरह हम चलते रहे, इसी गति से, जैसा कि विषय गति सुरक्षा, इसी गति से चले, सुरक्षा को माइनस किया और स्पिरिचुअलिटी का ध्यान नहीं रखा, तो हम सेकंड मेजर कंट्रीब्यूटर हो जाएंगे 2025 में। यानी कि दुनिया में जो मौतें होती है, चाहे टेररिज्म से होती हो, चाहे प्लेग महामारी से होती हो, चाहे और किसी नेचुरल कैलिमिटीज से होती हो, उन सबको पीछे छोड़ के वी वुड बी द सेकंड मेजर कंट्रीब्यूटर इन द डेथ। ये कोई बहुत अच्छा आंकड़ा नहीं है, इसलिए भी हमें इस विषय पर विचार करना चाहिए। ज्यादातर कौन है? 68% तो एशिया और अफ्रीका है, क्योंकि यहां पे पॉपुलेशन ज्यादा है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज हमारे अंदर सिविक सेंस कम है दुर्भाग्य से। और ये स्वीकार कर लेंगे तो हम सुधार भी करेंगे। और ज्यादातर इसके विक्टिम्स कौन है? जो टू व्हीलर राइडर्स हैं या पेडेस्ट्रियंस हैं, क्योंकि फोर व्हीलर राइडर्स के पास फिर भी थोड़ा सेफ्टी कवच होता है। वो चीजें हैं। नेक्स्ट, अब इंडियन सिनेरियो हम देखें तो हमारा बहुत पुअर ट्रैक रिकॉर्ड है। 1.6 लाख, ये 2012 के फिगर्स हैं, 1.6 लाख हमारी कैजुअलिटीज हुई है रोड एक्सीडेंट्स में, और 5.5 लाख ग्रीवियस इंजर्ड हुए हैं। और आप जानते हैं कि रोड एक्सीडेंट में मर जाना एक बात है और ग्रीवियस इंजरी होना उससे भी शायद बदतर बात है। क्योंकि अगर आप जिंदा हैं, चम्मच उठा के आप अपना खाना नहीं खा पाते हैं, इफ यू आर पैरालाइज्ड, या आप चल नहीं पाते हैं, या आपके वर्टीब्रा टूट गया है, या आपके सेंसेस खत्म हो गए हैं क्योंकि आपको हेड इंजरी हुई है, तो मैं समझता हूं कि वो मौत से भी बदतर है। तो वो वहां 5.5 लाख ऐसी ग्रीवियस इंजरी हमारे इस देश में हुई है। 430 पीपल डाई इन रोड एक्सीडेंट्स इन इंडिया एवरी डे, रोजाना 430 लोग। और आप जानते हैं जो 26/11 हुआ था उसमें से आधे मरे थे, यानी यह कहा जा सकता है कि देर आर 2 26/11 एवरी डे ऑन इंडियन रोड। 26/11 पे हमने हायतोबा मचाया, इतने लोग मारे गए, मासूम मारे गए, उससे डबल डेली हमारी रोडों पे मर रहे हैं। इसलिए भी ये पॉइंट ऑफ कंसर्न होना चाहिए। लॉस टू द नेशन तो है ही है, 1,00,000 करोड़ का, वो चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर में हो, चाहे इंश्योरेंसेज में हो, चाहे जिंदगियों में हो, चाहे रिम्यूनरेशन में हो, चाहे एक्सग्रेसिया में हो, 1 लाख करोड़ का पर ईयर का लॉस रोड फेटलिटी जो रोड एक्सीडेंट्स के कारण हमारे देश पर पड़ता है, जीडीपी पड़ता है, यानी कि हमारे ऊपर पड़ता है। ये देखिए फिगर हमारे सामने, एक लाख करोड़, 1 लाख करोड़ का सालाना लॉस रोड एक्सीडेंट्स की वजह से। यस, ये आईआरएफ इंटरनेशनल रोड फेडरेशन के आंकड़े हैं, वो चाहे एक्सपीरेशिया के रूप में हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में हो, चाहे तोड़ फोड़ के मामले में हो, चाहे और चीजों में, ये हमारा लॉस है नेशन का। आप देखिए नेक्स्ट में, ये 2008 में 23,704 एक्सीडेंट हुए हैं, 25,114, 24,302, देखिए 23,245 और 22,969। अब नंबर ऑफ डेथ्स देखिए हमारी बढ़ रही, नंबर ऑफ एक्सीडेंट्स थोड़े कम हो रहे हैं और नंबर ऑफ डेथ्स बढ़ रही है। ये इट्स ए पॉइंट टू बी पॉन्डर्ड एंड पोस्ड अपॉन, क्या कारण है कि एक्सीडेंट्स कम हो रहे हैं लेकिन मौतें बढ़ रही है। कहना हो ये रहा है कि हमारे व्हीकल बड़े हो रहे हैं, रोड साफ सुथरी हो रही है, रोड बड़ी हो रही है, चौड़ी हो रही है, लेकिन जब एक्सीडेंट्स होते हैं तो दे आर मोर फेटल इन नेचर। इसका मतलब हमारे अंदर कहीं ना कहीं सिविक सेंस की कमी आई है कि जो ही हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सुधरा तो हमने जो सेफ्टी नियम्स हैं उनको तो अनदेखा कर दिया और तेज चलने लगे, तो जबकि एक्सीडेंट हुआ तो नंबर ऑफ कैजुअलिटीज बढ़ गई और ये आंकड़े अलार्मिंग है। अब एक जो मैं आपके सामने, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपको कोई रोड का कानून पता नहीं है या मुझे पता नहीं है या अधिकांश लोगों को मालूम है, प्रॉब्लम वहां है कि हम उसको फॉलो नहीं करते। मैं चाहता हूं कि हम चेतना के स्तर पर कहीं ना कहीं इस सब्जेक्ट से जुड़े कि क्यों इसका पालन करना चाहिए। आज हमारे साथ नहीं हो रहा है तो हम सेफ हैं, कल हमारे साथ हो जाएगा तो ये सेफ है और हमने भुगता है। ये मैं एक डिनोमिनेशन आपके सामने पेश किया है कि जो भी गाड़ी चलाता है, चाहे आप या मैं, वो एक ड्राइवर है, इट्स डिनोटेड बाई डी, ये डी हमारा ड्राइवर है, वो ट्रक ड्राइवर भी है तो मोटरसाइकिल ड्राइवर भी है तो कार ड्राइवर भी है। हर व्यक्ति बहुत बहुत कम भी अगर संबंध रखे तभी इतने लोगों से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है, वो वाइफ हो सकती है, हस्बैंड हो सकता है, सिबलिंग, फादर, मदर, फ्रेंड, ऑफिस कलीग, डॉटर, सन, ये वो लोग हैं जो आपसे सीधा सीधा जुड़े हुए हैं, यानी कि उनको फर्क पड़ता है आपकी जिंदगी से, आपके होने और नहीं होने से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, वो ये लोग हैं। इसके अलावा भी हैं, बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मैंने एक बार क्लोज सर्किट लिया है। अब आपकी लापरवाही से ये हो गया, अब आप वहां नहीं है, उनके सारे संबंध आपका वेट कर रहे हैं और तब पीछे ये छोड़ते हैं आप। इसलिए भी ये विषय महत्वपूर्ण हो जाता है कि मित्रों, रोड एक जगह से दूसरी जगह जाने का माध्यम है बस, न तो वो रेसिंग ट्रैक है, न बहादुरी और कलाबाजी दिखाने की जगह है और न ही इस तरह बेमौत मरने की जगह है। इसलिए यह विषय महत्वपूर्ण हो जाता है। नेक्स्ट, ये हमारे जो फिगर्स है वो कहते हैं कि जो परसेंटेज वाइज अगर हम फॉल्ट देखें तो ड्राइवर फॉल्ट से हमारी 75% रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, बाकी जो हैं पैसेंजर्स की गलती से 4.7 या बेड वेदर से, बेड रोड से, मैकेनिकल फॉल्ट से। मेरा मसला ये है कि ये जो बाकी 25% हैं इसके लिए खूब सारी एजेंसीज काम कर रही हैं। आपको और मुझे ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, देयर आर रोड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट्स, और भी बहुत सारे एनजीओज काम कर रहे हैं, लेकिन ये जो 75 है इस पे हमें ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये आप और हम कर रहे हैं, रोड पे चलने वाला ड्राइवर कर रहा है। ये आंकड़ा, एक मिनट बैठ, ये आंकड़ा कहता है कि वन पर्सन इज किल्ड इन अ रोड एक्सीडेंट इन एवरी 4 मिनट्स, जब 4 मिनट में एक मौत हो रही है, मुझे बोलते हुए 8 मिनट हो गए हैं, 2 मौतें हो चुकी है रोड पे। इसलिए ये आंकड़े अलार्मिंग है, इसलिए ये सब्जेक्ट सेंसिटिव है। कि कहीं ना कहीं हम यहां महसूस करें कि चाहे हमारी क्षति हो चाहे किसी और की क्षति हमारी वजह से हो, आखिर में जो भुगतने वाले परिवार हैं, क्योंकि मैन इज अ सोशल एनिमल, हमारे नहीं होने से हमें ही फर्क नहीं पड़ता, औरों को भी फर्क पड़ता है और बहुत गंभीर फर्क पड़ता है, क्योंकि आदमी जब जाता है तो उसका रिक्त स्थान कोई भी पैसा नहीं भर सकता, कोई भी एक्सग्रेसिया नहीं भर सकता, कोई भी क्षतिपूर्ति नहीं भर सकती, सरकार का कोई भी अनाउंसमेंट नहीं भर सकता, आदमी का खालीपन हमेशा मौजूद रहता है। इसलिए आदमी को अपनी जिम्मेदारी स्वयं समझनी चाहिए। क्या करें कि इससे टाला जा सके, इससे बचा जा सके? नेक्स्ट, तो एक मिस्टर स्मिथ हुए, उन्होंने 5 keys दी है वाइल्ड ड्राइविंग, हर एक के लिए नॉर्मल बातें हैं, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। एम हाई इन स्टीयरिंग, जब भी हम गाड़ी चलाते हैं तो कई बार क्या होता है कि स्टीयरिंग के आसपास इतने सारे तामझाम होते हैं कि हम हाई नहीं देखते, आगे नहीं देख पाते, और ये ड्राइविंग स्किल है, ये सही नहीं है टेक्निकली। हमारी जो स्टीयरिंग है वो हमारे हाथ में हो लेकिन हमारी नजर बहुत आगे तक हो। अमूमन हम क्या करते हैं कि सीडी चेंज करते रहते हैं, वॉल्यूम बढ़ाते घटाते रहते हैं, एसी को छेड़ते रहते हैं, तो हमारा ध्यान भटकता है। वो सब चीजें कर लें एक बार, उसके बाद वन शुड ऑलवेज एम हाई इन स्टीयरिंग। एम हाई इन स्टीयरिंग का मतलब हो गया कि ये गाड़ी चलाने का आपका पोस्चर होना चाहिए। नेक्स्ट, गेट द बिग पिक्चर। इसके मायने ये है कि न केवल आप आगे देखें कि आगे कौन से मंजर आ रहे हैं, कौन सा वाहन आ रहा है, मुझे कहां मुड़ना है, इसके साथ साथ ये भी देखें कि वेदर में कोई ड्रास्टिक चेंज तो नहीं हो रहा है, कोई जो लैंडस्लाइडिंग का की संभावना तो नहीं उत्पन्न हो रही है, कोई मेरे व्हीकल में कोई इंजन टेम्परेचर बहुत ज्यादा तो नहीं हो रहा है, वो सब चीजें आपको देखना चाहिए, जिसको कहा है गेट द बिग पिक्चर। कीप योर आईज मूविंग। नाउ दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टू रीजन्स। वन इज, जब आप आईज को मूव करते हैं, इस साइड मिरर में देखते हैं, इस साइड मिरर में देखते हैं, आई बॉल्स को रोल करते हैं, आगे देखते हैं, थोड़ा इधर साइड में घुमाते हैं, तो एक तो फायदा यह है कि आपको सारा क्लियर व्यू मिलता है, पीछे आपको कौन सा वाहन ओवरटेक करना चाहता है या आगे आपको क्या होने जा रहा है, साइड में क्या है, आपको कितनी जगह है। नंबर टू, ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि जब आप आई बॉल्स को रोल करते हैं तो आपको नींद नहीं आती है। अगर आप एक ही जगह ऐसे जैसे देखेंगे तो आपको डोजीनेस आएगा, लेकिन इफ यू कीप योर आई बॉल्स रोलिंग तो आपको नींद नहीं आएगी। ये दो फायदे हैं, इसलिए इसने कहा है कि कीप योर आईज मूविंग। नंबर फोर, लीव योर सेल्फ एन आउट, थोड़ा जगह छोड़िए ताकि कोई भी सडन रिक्वायरमेंट आए तो आप संभल सकें। हम क्या करते हैं कि बिल्कुल उसको बैक में पीछे पीछे चलते रहते हैं, केवल न केवल चलने समय भी बल्कि जब खड़े हों पार्क करें तब भी इतनी जगह होनी चाहिए कि कोई एकदम इंस्टेंसली हमें कुछ करना हो तो हम कर पाए। मैं तो कहता हूं कि न केवल रोड पे गाड़ी चलाते समय, जिंदगी में भी कीप योर सेल्फ एन आउट, थोड़ा सा जगह दीजिए। तमीज का दायरा भी ये कहता है कि हम किसी से बात भी करें या किसी के पास जाएं तो उसका पर्सनल स्पेस छोड़ें, अपना पर्सनल स्पेस छोड़ें तब बात करें। होता क्या है कि हम जगह नहीं छोड़ते, हम फासला रखते ही नहीं है। बशीर बद्र ने एक बहुत खूबसूरत शेर कहा है कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है, जरा फासले से मिला करो। तो वो फासला जिंदगी में भी और रोड में भी बहुत जरूरी है, इसलिए हमेशा जगह रखिए। मेक श्योर दे सी यू। होता क्या है कि हमने मान लिया कि हमने हॉर्न दे दिया, लेकिन हमारे मानने से चीजें नहीं बदलती, हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि अगले ने हमें देख लिया है। वैसे तो यूरोपियन देशों में तो हॉर्न बजाना बदतमीजी की श्रेणी में आता है, लेकिन वो तब है जब उन्होंने हाई लेवल ऑफ सिविक सेंस आ गया है। अगर हमारे अंदर नहीं है तो अभी हमें यह इंश्योर करना पड़ेगा कि जिसके लिए हॉर्न बजाया है उसने हमें देख लिया है और हमारा जो कम्युनिकेशन है वो कन्वे हो चुका है, इट इज ड्यूली कम्युनिकेटेड टू द पर्सन। तो वो कैसे होता है, आई कॉन्टेक्ट से आप ये जज कर सकते हैं कि अगले को देख के कि मेरे हॉर्न बजाने से वो मैं क्या करना चाहता हूं वो समझ चुका है। नाउ, अब हम ये तो रूल्स हुए जो हमें जानने चाहिए, अब कुछ ऐसी चीजें हम जानते हैं लेकिन वो हम नहीं करते हैं, उस पर मैं आपके सामने विचार करूंगा वन बाय वन। एंड द वन मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डोंट यूज मोबाइल फोन व्हाइल ड्राइविंग। मित्रों, ये बहुत छोटी सी और मामूली सी बात है, लेकिन होता क्या है कि हम जिस समय हमारा फोन आ जाता है उस समय हम सारे नियम कायदे भूल जाते हैं और हम उससे उठा के बात करने लगते हैं, और ताज्जुब तो तब होता है जब हम खुद ही हम स्क्रॉल करके और वापस से डायल करने लगते हैं, और हैरानी की बात तो यह है कि कुछ लोग मैसेज भी पढ़ते हैं ड्राइविंग करते समय, इनबॉक्स निकाला, व्हाट्सएप निकाला और उसको बैठ के देखते रहेंगे। इसके कितने फेटल कंसिक्वेंसेज है ये देखिए आप। मोबाइल फोन्स किल मोर पीपल देन गन्स डू। आजकल बंदूकों से इतने लोग नहीं मरते जितने मोबाइल फोन से मरते हैं. फैक्ट, नियरली 25% ऑफ ऑल ट्रैफिक क्रैशेस इन्वॉल्व समवन टॉकिंग ऑन सेल फोन. या तो आप बात कर रहे होते हैं या अगला बात कर रहा होता है. ये 25% जो हमारे एक्सीडेंट्स हैं वो सेल फोन इन्वॉल्वमेंट है उसमें. इसलिए कहा है कि डोंट टॉक व्हाइल ही ड्राइव्स. ये मोहतरमा बात कर रही है, हमारे घर से फोन आता है तो बीवी पूछती है कि ड्राइव तो नहीं कर रहे हो, या मैं बात कर लूं, बात कंटिन्यू रखूं, तो हम कहते हैं नहीं नहीं कोई खास नहीं, बस थोड़ा ड्राइव ही कर रहा हूं, और हम बात जारी रखते हैं. और तब उसको फोन में से इस तरह के हालात देखने को मिल सकते हैं. इसलिए कहा कि वो चला रहे हो तो आप बात न करें. माताओं बहनों से भी कहना चाहता हूं कि आप इंश्योर करिए कि वो ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं जब आप बात करें. नेक्स्ट, ये ऐसा मुद्दा है जिस पर अमूमन मैं बात करना कम पसंद करता हूं, क्योंकि अगर कोई ड्रिंक करके ड्राइव कर रहा है तो फिर उसको समझाने का भी कोई विशेष फायदा नहीं है. ये एक साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि आदमी ड्रिंक क्यों करता है, टू गेट हिमसेल्फ रिलैक्स्ड, उसका नर्व सिस्टम रिलैक्स हो, इसलिए वो ड्रिंक करता है. जो ड्रिंक करते हैं उसके पीछे लॉजिक यही देते हैं वो कि हम थकान है हमारे अंदर, हम थोड़ा रिलैक्स होना चाहते हैं, तो नर्व सिस्टम हमारा रिलैक्स हो जाएगा, हमारी नर्व ढीली हो जाएगी, तो हमें थोड़ा आराम मिलेगा और थकान और फटीक कम हो जाएगा. एग्रीड, चलो मैं इसको मान लेता हूं कि वो थकान कम होती है, हम इसके गुणावगुण पर विचार नहीं भी करते हैं. यानी कि रिलैक्स हो गए हैं आप, तो रिलैक्स का काम करिए, और ड्राइविंग तो अलर्ट का काम है, तो आप रिलैक्स होकर अलर्ट का काम करते हैं तो ये तो कॉन्ट्राडिक्शन हुआ, ये तो कहीं भी जस्टिफिएबल नहीं है. या तो आप अलर्ट होकर अलर्ट का काम करिए या रिलैक्स होकर रिलैक्स का काम करिए. ये जो दोनों मिक्स करते हैं हम कि हमारे सारे नाड़ी तंत्र रिलैक्स हो जाए, हमारी डिसीजन पावर रिलैक्स हो जाती है, शिथिल हो जाती है, हम डिसीजन भी नहीं ले पाते, जजमेंट भी हम प्रॉपर नहीं कर पाते, और तब हम गाड़ी चलाते हैं, तो इससे ज्यादा फेटल कुछ नहीं हो सकता खुद के लिए. एक वीडियो आप छोटा सा देखें ड्रिंक और ड्राइव का. हैं इन्होंने पार्टी की है, अब ड्राइव कर रहे हैं. Could you live with the shame? क्या इस शर्मिंदगी के बाद आदमी जिंदा रहना पसंद करेगा? और हुआ क्या था? जब आपने मैच जीता है, जब आपने पार्टी की है, तो देन डोंट ड्राइव. अब आपने ड्राइव किया है, एक हंसता खेलता बच्चा खेल रहा था, और अब आप इस शर्मिंदगी का चेहरा लेके खड़े हैं. आप अपने आप से भी सवाल करेंगे तो जिंदगी में कभी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे. बल्कि मैं तो कई बार यह भी कहता हूं मित्रों, कोई ट्रक ड्राइवर है, मैं कई बार ट्रक ड्राइवर्स को संबोधित करता हूं, तो उनसे हाथ जोड़ के कहता हूं कि जब भी आपको लगे कि अब आप ड्रिंक किए हैं और गाड़ी की स्टीयरिंग पे बैठे हैं, तो एक बार घर पे अपनी हंसती खेलती छोटी सी गुड़िया सी बच्ची का चेहरा दिमाग में ले आएं, और इसके बाद मेरा दावा है कि आप स्टीयरिंग छोड़ के वापस नीचे उतर जाएंगे. लेकिन हम क्या करते हैं कि हम दूसरे की जिंदगी की कीमत समझते ही नहीं है. हम बहुत ज्यादातर मसला लापरवाही का है, अज्ञानता का ही नहीं. हम सोचते ही नहीं है कि कोई हमारा घर पे वेट कर रहा है, और सिर्फ इसलिए कि हमें एक अजीब सा आनंद आ रहा है तो हम ड्राइविंग कर रहे हैं ड्रिंक करके. इसलिए इस विषय पे ज्यादा किसी को कहना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कोई खुद आदमी किसको हम बचाना चाहते हैं और बचाना ही नहीं चाहता, तो उसका क्या इलाज है? ये जो फिगर है ये बताता है कि हमारी जो आईज होती है वो ब्लर्ड होती है आफ्टर ड्रिंकिंग द अल्कोहल. यानी कि एक लेवल में प्रॉब्लम आती है, चीजों को देखने में प्रॉब्लम आती है. इसलिए जहां जजमेंट की बात हो, जहां निर्णय लेना हो, और रोड पे तो क्षण क्षण में निर्णय लेना पड़ता है. हर्बर्ट साइमन ने कहा है कि लाइफ इज ऑल अबाउट डिसीजन मेकिंग. मैं कहता हूं रोड ऑन रोड एवरी मिनट एवरी मोमेंट यू टेक ए डिसीजन कि मुझे कहां मुड़ना है, मुझे कहां एक्सीलेटर दबाना है, कहां मेरे को ब्रेक यूज करना है. जहां हर क्षण आपको निर्णय लेना हो, वहां पर इस तरह का काम हम ना करें कि हमारी निर्णय क्षमता वीक पड़ जाए, कमजोर पड़ जाए. नेक्स्ट, नाउ पुअर एंटिसिपेशन एंड कॉन्सेंट्रेशन. कल स्वामी भाई बता रहे थे कॉन्सेंट्रेशन का मसला. روڈ پہ کنسنٹریشن کتنا ضروری ہے. یہ دیکھیے جناب چلا کدھر رہے ہیں, بات کدھر کر رہے ہیں, اور ایک یہ موبائل پہ مصروف ہیں, یہ ہمارے کنسنٹریشن توڑتا ہے. جب ہم موبائل پہ بات کرتے ہیں, اسکرول کرتے ہیں, کچھ اور کرتے ہیں, تو ہمارا سارا دھیان ادھر ہے. اور ایسا ابھی تک ہمارے اندر کوئی ہنر نہیں آیا ہے کہ ہم ایک ساتھ دو کام کر سکیں, ایک ساتھ ایک ہی کام کر پاتے ہیں. اس لیے ہمیشہ کنسنٹریشن, پور اینٹیسپیشن اور لیک آف کنسنٹریشن از دا میجر فیکٹر آن روڈ ایکسیڈنٹس. ایک چھوٹا سا ویڈیو کنسنٹریشن کا دیکھیے آپ کہ ہماری پرائیورٹی کیا ہو روڈ پہ. پرائیورٹی کہاں کیا کرنا چاہیے. ماؤتھ سے تم نے کہا تھا کہ دیر از نتھنگ لائک رانگ اور رائٹ ان دس لائف, اٹ از دا ٹائم اینڈ پلیس وچ میکس تھنگس رانگ اور رائٹ. چیزیں کوئی غلط اور صحیح نہیں ہوتی ہے, وہ جگہ اور استھان اور سمے. تو کہاں کیا کرنا چاہیے, وہ ہمیں روڈ پہ کیا کرنا چاہیے, وہ ہماری پرائیورٹی کیا ہونی چاہیے, یہ دھیان دینا چاہیے. کیونکہ انڈرسٹینڈنگ ہیلز انڈرسٹینڈ پرائیورٹیز آن دا روڈ. نیکسٹ نیکسٹ انشور وہیکل. آپ یہ انشور کریں کہ آپ کا وہیکل ہے مینیجیبل لمٹ میں ہو. اب مینیجیبل لمٹ ڈیفر کرتی ہے, ہائی وے پہ الگ ہوتی ہے, سٹی میں الگ ہوتی ہے, آپ کی الگ ہوتی ہے, میری الگ ہوتی ہے. ہم کس طرح کے ڈرائیور ہیں ہمیں معلوم ہونا چاہیے, اور ہماری مینیجیبل لمٹ کیا ہونی چاہیے, کتنے میں ہم کسی بھی پرابلم میں اس کو مینج کر سکتے ہیں, دیٹ از مینیجیبل لمٹ. فور ٹو ٹو فور سیکنڈ فالوئنگ ٹائم, جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ تھوڑا سا ہمارے پاس جگہ ہونا چاہیے کہ دو چار سیکنڈ ہمارے پاس ہوں, اگر کوئی ایک دم ارجنسی آ جائے تو ہم سنبھل سکیں. ٹیک کیئر آف فٹیگ اینڈ ٹائرنس. دس از اندر موسٹ امپورٹینٹ پوائنٹ. تھکان ہوتی ہے انسان میں, یہ ماننا چاہیے. ہوتا کیا ہے کہ ہم تھکان سویکار کرنے میں بے عزتی محسوس کرتے ہیں. ہمارے پریوار والے, ہماری بیوی, ہمارے بچے پوچھتے ہیں کہ پاپا آپ تھک گئے ہیں تو ریسٹ کر لیجیے, لیکن ہم کہتے ہیں نا میں تو تھکا ہی نہیں. جیسا کہ تھکنا کوئی شرمندگی کی بات ہے, انسان ہے تو تھکے گا, ہمارا میٹابولزم کہتا ہے کہ ہم تھکیں گے, اور ہم سویکار نہیں کرتے, اور اس کے بعد شریر سے جاتی کرتے ہیں اور اس کے دشپرینام ہوتے ہیں. شاید ایک ویڈیو ہے اس میں بھارت بھائی, یہ دیکھیے آپ فٹیگ اور ٹائرنس کا.
Leaving it a bit late, aren't you, matey?
Oh, no worries. Plenty of time.
That's up to one. I'll see you later, I think.
Yeah, okay, mate. See you.
Now, you drive safely?
Yeah, always do, Steve-o.
What a morning. What a week. Hey, Ben.
Yeah.
It'd be good to get back to work for a bit of a rest.
Mm. Can we get something to eat?
Yeah, sure.
Yeah, no worries, mate. Let's just get a bit of distance behind us first, shall we?
Tell me to drive for a while.
Yeah,
can I
sleep?
I love this Steak and Brenda. Why don't we stop and get something to eat?
Yeah, okay, but let's keep going for a bit, mate.
بریک فٹی کلس. مہربانی کر کے جہاں بھی تھکان محسوس ہوتی ہو وہاں اپنے آپ کو بریک دیجئے, اور یہ انشور کریے کہ تھکنا کہیں بھی شرمندگی کا وشے نہیں ہے. یوز ہور ہون ٹو اسٹیبلش آئی کانٹیکٹ, میں نے بتایا آپ کو, آپ کا آئی کانٹیکٹ ہونا چاہیے, ہمارا میسج کمیونیکیٹ ہوا کہ نہیں, یہ انشور کرنا چاہیے. ہیلمیٹ, دس از اندر امپورٹنٹ ایشو. ہیلمیٹ کیوں ضروری ہے؟ ہیلمیٹ اس لیے ضروری ہے کہ ہمارا سر بہت قیمتی ہے. کل سوامی بھائی بتا رہے تھے کہ پیٹوٹری گلینڈ کوئی کمانڈ دیتی ہے ہماری باڈی کو, تو ہماری باڈی کام کرتی ہے, اور اگر کمانڈر خراب ہو گیا تو پھر ساری باڈی ویسٹ ہو جائے گی. کمانڈر کہے گا کہ چمچ اٹھاؤ اور مجھے فیڈ کرو, لیکن ہاتھ نہیں مانے گا اس کو, کیونکہ وہ پیرالائزڈ ہو گیا ہے یا کمانڈر خراب ہو گیا. ہیلمیٹ پہنیے. ہیلمیٹ کا ایجاد اس لیے ہوا کہ ہمارا سر سرکشت رہے. اب جوان جو بھائی ہیں بہن ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بال خراب ہو جاتے ہیں. تو میرا ان سے ہاتھ جوڑ کے پرارتھنا ہے کہ ایک کنگا رکھیے جیب میں. کنگا رکھنا زیادہ سویدھا جنک ہے, زیادہ سستا ہے, بجائے کہ اس کو داؤں پہ لگانا. کیونکہ ہمارے سارے نرنے یہ کمپیوٹر ہے, یہ ماسٹر ہے, اس کے بنا ہم کچھ بھی نہیں ہے. اس لیے ہیلمیٹ پہنیے. نیکسٹ یہ دیکھیے آپ, ہیلمیٹ کیوں ضروری ہے.
دس از اے اسکل لائک اینی ادر اسکل آف اے موٹر سائیکلسٹ. دس از اے ہیلمیٹ لائک اینی ادر ہیلمیٹ آف اے موٹر سائیکلسٹ. اینڈ دس از این ایکسیڈنٹ لائک اینی ادر ایکسیڈنٹ. As you've seen, it pays to obey the rules.
It pays to obey the rules. In fact, میں تو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ obey the traffic rules. It reflects your character. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا چرتر کیسا یہ طے کرتا ہے کہ ہم کون سے نیم کا پالن کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں. اگر ہم بدتمیز ہیں, تہذیب کے خلاف ہیں, تو ہم دیکھیں گے کہ کسی کانسٹیبل کی نظر ادھر سے ادھر ہوئی اور ہم پیچھے سے بھاگ لیں گے. اگر ہم تھوڑا بھی نیموں کا پالن کرتے ہیں, لو بائڈنگ ہیں, چرتروان ہیں, تو ہم یہ انشور کریں گے کہ چاہے وہ دیکھ رہا کہ نہیں دیکھ رہا, جہاں یو ٹرن نہیں ہے وہاں ہمیں نہیں مڑنا ہے, یا جہاں ریڈ لائٹ ہے وہاں ہمیں اس کا پالن کرنا ہے. اور یہ آپ سب لوگ میں سے ادھکانش باہر بھی گئے ہوں گے, یوروپ بھی گئے ہوں گے, میرا اپنا نجی ذاتی تجربہ ہے کہ وہاں پہ اگر رات کی 3 بھی بجا ہے لیکن اگر آپ کو نہیں مڑنا ہے تو نہیں مڑتے ہیں, جبکہ کوئی بھی کھڑا نہیں ہوتا ہے وہاں پہ. اور یہاں دن کے 3 بجے بندے کی نظر چکی اور وہ ادھر سے نکل جائے گا. وہ سمجھتا ہے کہ کوئی نہیں, میں ابھی نکل جاؤں گا. لیکن جو لو بریک ہوا ہے اس کے جو بہت بڑے دشپرینام ہوتے ہیں اس کی طرف ہم نہیں سوچتے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے چرتر میں آ گیا ہے, ہماری نیچر میں آ گیا ہے کہ کیا ہوا میں تو نکل گیا, ہم روڈ لائٹ کو جمپ کر لیتے ہیں. اب ریڈ لائٹ کو جمپ کرنے کا سب سے بڑا دشپرینام ابھی آپ نے دیکھا ہے, جو ہمارے کیندری منتری کی موت ہوئی تھی, وہ مسئلہ صرف روڈ لائٹ کو جمپ کرنے کا تھا. نہ تو بہت زیادہ ٹریفک تھا, نہ کچھ اور روڈ خراب تھی, نہ روڈ انجینئرنگ خراب تھی. ایک کو لگا کہ صبح کا سمے ہے کوئی نہیں آ رہا تو میں ریڈ لائٹ کو جمپ کر جاؤں, اور دوسرے کو لگا کہ میں تو ریڈ لائٹ, میرے تو گرین لائٹ ہے, مجھے تو جانا ہی چاہیے. اور دونوں کا ایسا کولیجن ہوا کہ آدرنیہ کون سے بھارت جی منڈے صاحب اب نہیں ہے. اور یہ ایک مسئلہ ہے, وی آئی پی ہونے سے ہمارے دھیان میں آ گیا. ایسے روز مسئلے ہوتے ہیں, اس لیے لو اوائڈنگ ہونا چاہیے. ہیلمیٹ کی ہم بات کر رہے تھے کہ اوائڈ ہیلمیٹ, آلویز ویئر ہیلمیٹ. جہنم میں ہماری ملاقات نہیں ہو, اس لیے ہیلمیٹ کا استعمال کرنا چاہیے. یہ اس طرح سے ہمارے شریر کو بچاتا ہے. یہ بیک بیک ویلیو یور برین, نو ون گیٹس سیکنڈ ون. وہ ایک بار ہوا تھا گنیش جی کو, دوسرا مل گیا تھا, اب نہیں ملتا ہے, وہ کام بند ہو گیا اب. اس لیے ہمارے برین کی ہمیں حفاظت کرنی چاہیے. ٹو اوائڈ ہیلمیٹ, اوکے فائن. پوائنٹ 10, آلویز ویئر یور سیٹ بیلٹ وین یو ڈرائیو فور ویلر. اب سیٹ بیلٹ آپ کی رکشا کیسے کرتا ہے کہ جب آپ کو کوئی جرک لگتا ہے, چاہے وہ ہیڈ آن کولیجن ہو, چاہے کچھ اور ہو, چاہے سڈن بریکنگ ہو, تو وہ آپ کو یہاں سے اور یہاں سے آگے نہیں جانے دیتا ہے. بس باقی اس میں کوئی جادو نہیں ہے. موتیں کیسے ہوتی ہے کہ ہماری ٹکر ہوتی ہے تو چونکہ گاڑی کی سپیڈ 100 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے تو ہماری سپیڈ بھی 100 کلومیٹر پرتی گھنٹہ ہے. اب جرک لگا تو گاڑی تو رک گئی, ہم نہیں رکے تو ہم آگے بڑھتے ہیں. تو ہم آگے ایڈوانس ہوتے ہیں تو یا تو آگے کے وہیکل سے ہماری ٹکر ہوتی ہے یا کار سے ہوتی ہے, تو ہیڈ انجری ہوتی ہے. تو ہیڈ انجری سے یا تو موت ہوتی ہے یا پیرالائزڈ ہوتے ہیں. دوسرے ادھکانش ڈرائیورس کی موت ہوتی ہے یا ربس میں اسٹیئرنگ گھسنے سے, کیونکہ جب آگے کا جرک لگا تو وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پایا تو یہ اسٹیئرنگ یہاں گھس جاتی. اس لیے سیٹ بیلٹ بہت ضروری ہے. اور کہاں ضروری ہے؟ ہائی ویز پہ جہاں اسپیڈ ہوتی ہے. ہم کیا کرتے ہیں کہ شہر میں لگاتے ہیں کہ پولیس چالان نہ کرے, اور ہائی وے پہ جاتے ہی کھول کے پھینک دیتے ہیں. چالان اتنا گھاتک نہیں ہے جتنا آپ کی موت ہو جائے گی, جتنا آپ کا نقصان ہو جائے گا. اور شہر میں تو اس لیے پولیس کھڑی رہتی ہے کہ آپ میں وہ ہیبٹ انکلکیٹ کرے, باقی ضرورت نہیں ہے شہر میں. 20-25 کلومیٹر پرتی گھنٹہ چلانے کے لیے آپ کو سیٹ بیلٹ کی ضرورت نہیں ہے, لیکن ٹو انکلکیٹ دا ویری ہیبٹ ان یو سو دیٹ یو کین پٹ آن دا ہیلمیٹ, پٹ آن دا سیٹ بیلٹ. کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ میں کسی ٹیکسی میں بیٹھتا ہوں تو میں ڈرائیور سے کہتا ہوں میں سیٹ بیلٹ لگا رہا ہوں, اور میں لگاتا ہوں تو میرا پورا وائٹ شرٹ یہاں خراب ہو جاتا ہے, کیونکہ اس سیٹ بیلٹ کو کسی نے یوز ہی نہیں کیا آج تک, وہ ڈسٹ سے بھرا ہوا ہے. نیکسٹ یہ یہاں چھوٹا سا ویڈیو دیکھ لیجئے. سیٹ بیلٹ آپ کا پریوار ہے جو آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے پریاس کرتا ہے. Always wear your seat belt. Next. Always obey traffic rules. देखिए सरकारें अपना प्रयास कर रही हैं, हमारी तरह की एजेंसीज अपना प्रयास कर रही हैं, इस तरह के संस्थान अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आखिर में हमारी जिंदगी हमारे लिए है, हमारे परिवार के लिए है, उसकी कीमत हम स्वयं समझें। एक शायर ने बहुत खूबसूरत शेर कहा है कि कश्ती का निगेबान सिर्फ नाखुदाई नहीं होता, कश्ती में बैठने का सलीका भी चाहिए। तो इसलिए हम सलीका रखें, हमारी जिंदगी महफूज रखें। शायद आखिरी स्लाइड है, थैंक यू वेरी मच। और हमारे साथी भारत जांगीर जिन्होंने प्रेजेंटेशन तैयार किया उनके लिए एक बार जोरदार तालियां।
भ्राता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, उन्होंने बहुत ही स्पष्ट तरीके से इस रोड सेफ्टी के विषय की गंभीरता और सेंसिटिविटी पे हम सभी का ध्यान खिंचवाया। हम सभी उम्मीद करते हैं कि उनकी बातों का हम सभी विशेष ध्यान रखेंगे ड्राइविंग करते वक्त। और अब मैं अपने नेक्स्ट स्पीकर, हाँ सभी, हम सभी उनके लिए एक बार जोरदार तालियां बजाएं।